लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
किशोर कुमार, अनोखी आवाज, अनोखा व्यक्तित्व, एक ऐसा कलाकार जिसके लिए कोई भी परिचय अपने आप में पूरा नहीं हो सकता, खरा नहीं उतर सकता। गाने का शौक तो उन्हें बचपन से ही था, लेकिन जानते हैं जब वो बहुत छोटे थे तब वो बहुत ही बेसुरे से थे, ये कहा था दादा मुनि ने, यानी उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान।
उसका क्या हुआ था, गाने में उसको शौक था ज्यादा, और जब वो पैदा हुआ था, तो सबको मालूम है, जब पैदा हुआ था तो गला इतना कर्कश था, इतना बुरा था, खांसते रहता। तो मैं आता था कॉलेज से, जब तो मेरे को सब माँ और मेरे पिताजी जब खाना वाना देते सब, तो है को नहीं है, जब आता था खाने देते माँ उसको, उस जानता नहीं था मैं उसको भाई हूँ। तो 5 बरस का था उस वक्त, क्या हुआ, गला इतना कर्कश, और हर बात पर एक बात करे खांसे, एक बात करे खांसे। तो उन्हें कुछ दवाई ववाई करूँगा, मेरे को मैं चला गया। फिर क्या हुआ, एक दफा आया तो माँ से कुछ मैं पैसा मांगा, माँ पर पैसा दो, तो हंसिया रखा था तरकारी काटने, उसमें उसका पैर लगा, उंगली कट गई, एक पैर की उंगली ऊपर की जो पैर था मैं एकदम कटकर हो गई, और जो रोना 5 बरस का लड़का था जो रोना शुरू किया, डॉक्टर आए या लगाए, उस वक्त ये दर्द मिटाने वाली दवाई अच्छी कोई होती नहीं थी, तो दिन में 22 घंटे रोता था, हाँ करके फिर उसको दवाई दे फिर चुप हो जाए, फिर रोते 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 जब उसका घाव साफ हुआ, उसके लिए रियाज हो गया, गला भी साफ हो गया,
तो बस गला साफ हुआ और उनके आदर्श बन गए गायक कलाकार केएल सहगल। बताया जाता है कि उनके घर में जब कोई आता तो उनके पिता कुंजलाल गांगुली उन्हें दोस्तों के सामने गाना सुनाने को कहते, तो किशोर कुमार गाना सुनाने का पैसा लेते। अगर गाना केएल सहगल का होता तो वो लेते 1 रुपया, दादा मुनि का होता तो वो लेते 25 पैसे, और हाँ अगर गाना बर्मनदा यानी सचिन देव बर्मन का होता तो लेते थे 50 पैसे। अब अशोक कुमार फिल्म जगत में जाने माने कलाकार थे और किशोर कुमार भी फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन एक गायक के रूप में। अशोक कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वो सिर्फ अभिनय की तरफ ही ध्यान दें, गायक बनने का तो सोचे ही नहीं, क्योंकि किशोर कुमार के पास संगीत की तो कोई शिक्षा नहीं थी, और दादा मुनि का उस समय मानना था कि किशोर कुमार की आवाज भी कुछ अच्छी नहीं थी। किशोर कुमार घंटों रियाज करते, गायक केएल सहगल के रिकॉर्ड्स लेकर आते और उन्हें ही अपना गुरु मानते। संगीत का शौक इतना था कि अलग अलग तरह से अपने आप ही धुने बनाते, और सिर्फ कविता की ही नहीं बल्कि कहते हैं कि एक बार उन्होंने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के एक लेख पर भी धुन बना डाली। खैर शुरू शुरू में कई संगीतकारों ने उन्हें नापसंद कर दिया था ये कहकर कि आवाज अच्छी नहीं है, और वही बाद में छा गए न सिर्फ एक गायक बनकर बल्कि यॉडलिंग करने वाले एक अनोखे अलग गायक। चूंकि वो बहुत ही हंसी मजाक उछल कूद करने वाले नटखट थे, किसी भी कलाकार की हूबहू नकल कर पाने की प्रतिभा रखते थे, तो उनके ना चाहने पर भी उन्हें फिल्मों में बतौर कलाकार काम मिल गया, और ये थी 1946 में बनी फिल्म शिकारी। फिर करीब 2 साल बाद फिल्म जिद्दी की शूटिंग चल रही थी जब संगीत निर्देशक रमेश चंद्र प्रकाश ने उन्हें गाते हुए सुना, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दादा मुनि से कहा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा गायक बनेगा और एक दिन संगीत की दुनिया में राज करेगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने किशोर कुमार को फिल्म जिद्दी में एक गाना गाने को भी दिया, और वो गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। किशोर कुमार ने ये गाना केएल सहगल की तरह गाया था और देवानंद पर फिल्माया गया ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ, और किशोर कुमार के लिए जैसे संगीत की दुनिया का दरवाजा खुल गया।
सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ।
उधर सचिंदा ने भी जब उन्हें बाथरूम में गाते हुए सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए। हाँ, उन्होंने उनको सलाह दी कि केएल सहगल की छाया से बाहर निकलना होगा और कहा कि तभी एक अच्छे गायक बन सकोगे। अब चाहे किशोर कुमार फिल्मों में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कलाकार की हैसियत से लोकप्रिय होते जा रहे थे। 1951 से लेकर 1958 के बीच उनकी 30 फिल्में बनी। 50 और 60 के दशक में वो मीना कुमारी, वैजंती माला, नूतन, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, मधुबाला समेत हर लोकप्रिय अभिनेत्री के साथ काम कर रहे थे और कई ऐसी फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल थी और लोकप्रिय रही।
अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
बस्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी।
कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा।
मेरी नींदों मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके, हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके, हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। एक लड़की भीगी भागी से, होती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
इस बीच किशोर कुमार ने खुद फिल्म्स बनाना भी शुरू कर दिया। प्रसिद्ध कैमरामैन अलोकी दास गुप्ता ने स्क्रीन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब बॉम्बे टॉकीज बंद हुआ तो दास गुप्ता के लिए काम मिलना मुश्किल हो गया। दास गुप्ता किशोर कुमार के करीबी मित्र थे। बेकारी की स्थिति में दास गुप्ता ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया, तो ऐसे में किशोर कुमार ने उनको ये कहकर रोका कि वो उनके लिए फिल्में बनाकर उन्हें काम देंगे। और तब किशोर कुमार ने बंगला भाषा में शेक्सपियर के मशहूर नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर फिल्म बनाई और इसके फौरन बाद अगली फिल्म हिंदी में बनाई, चलती का नाम गाड़ी। इन्हीं दिनों किशोर कुमार ने एक गंभीर विषय पर फिल्म बनाई दूर गगन की छाँव में। ये फिल्म कई अर्थों में उनके अपने ही व्यक्तिगत जीवन अनुभवों की प्रतिछाया थी। 2-3 महीनों में बनी ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक प्रयोगात्मक फिल्म थी। इसका संगीत भी उन्होंने खुद तैयार किया था। फिल्म समीक्षकों ने इसे बहुत सराहा और जब 1964 में मुंबई के अलंकार टॉकीज में ये फिल्म रिलीज हुई तो जानते हैं हॉल में देखने वाले कितने लोग थे? बस 10। लेकिन उसके अगले 8 हफ्तों तक फिल्म हाउसफुल रही और फिल्म ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसके बाद उनकी बनी फिल्म दूर का राही, ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में 15 हफ्तों तक चलती रही।
पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का।
किशोर कुमार के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो सनकी थे, कंजूस थे या बेफिक्र, हर बात को मजाक में टाल देने वाले। लेकिन उनके करीबी दोस्तों का मानना है कि वो एक बड़े ही दयालु, सादगी प्रिय और गंभीर व्यक्तित्व के मालिक थे, जो दूसरों के दुखों को अपना बना लेते थे। और यही बात उनके ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में अमिताभ बच्चन ने कही।
किशोरदा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी जिसे मैंने देखा। और मेरे ख्याल में ये एक बात जो थी वो मुझे बहुत छू कर रह गई।
संगीत में पहले देवानंद, फिर राजेश खन्ना, फिर अमिताभ समेत लगभग सभी कलाकारों को अपनी आवाज देकर सफलता की जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, उसके लिए कुछ भी कह पाना जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। 12 अक्टूबर 1987 को उन्होंने बप्पी लहरी और आशा भोसले के साथ गाने की रिकॉर्डिंग की और अगले ही दिन 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई।
जिंदगी एक सफर है जोसेफ साहब, और रास्तों का कोई अंत नहीं। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है, और मंजिलों के सिलसिले कभी खत्म नहीं होते। सिर्फ उनका साथ देने वाले मुसाफिर बदल जाते हैं। इन्हीं रास्तों में तो जिंदगी है जोसेफ साहब, कहीं खुशी कहीं आंसू, कहीं दुख कहीं हाहाकार, कहीं इतनी भूख और लाचारी कि इंसान पर जिंदगी भारी है, और कहीं इतनी खुशियां कि आदमी संभाले नहीं संभलता।
हाथ उठाकर बुला रहा घर, चल रहे मुसाफिर चल रहे, अब अपने घर को चल रहे, बस ये मेरी तमन्ना है, आखिरी तमन्ना।
चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले।
किशोर कुमार के अनगिनत बेमिसाल गीतों में से कुछ गीत चुन पाना बहुत ही मुश्किल काम था, तो इसीलिए आज शामिल किए कुछ वही गीत जो किशोर कुमार पर ही फिल्माए गए थे। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।